संगम युग में शुवा बसे, संगम युग में शुवा बसे, कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला।
सीरीज में आज का क्वेश्चन है, इस संगम युग को वरदान है कौन सा? उत्तर है, स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वे ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे ये सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएगा हो जाएगी। लेकिन हजूर आपका है तो ये सब हाजिर है, बीज आपका है तो ये सब फल आपके हैं। तो शुरू में एक कहानी बताना चाहूंगी जो हमने एक कार्टून से एक्सट्रैक्ट किया है। एक जंगल में एक बंदर था जो बहुत घूमना पसंद करता था। तो एक जंगल से दूसरा जंगल घूमते रहता था और खाते रहता था, उसको खाना भी बहुत पसंद था। तो घूमते 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 एक दिन ऐसा हो गया कि वो सारा जगह घूम लिया उसने। फिर उसने एक नदी के किनारे जाके बैठा, एक पत्थर के ऊपर। नदी में देखा तो मछलियां तैर रहा था, ऊपर आकाश में देखा पंछी उड़ रहे थे। फिर दुखी होकर बैठ गया कि पूरे जगह तो हमने घूम लिया पर मैं कभी भी पानी में नहीं तैर सकता, ना ही आकाश में उड़ सकता। इंद्रदेव ने देखा है, देख के वहीं पे प्रकट हुआ। प्रकट होके बोला, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? फिर उसने बताया कि मुझे तो ऊपर उड़ना था, मछली जैसे तैरना था, पर मैं नहीं कर सकता। तो इंद्रदेव ने बोला, मेरा एक काम कर दोगे तो ये हो सकता है। फिर बंदर ने पूछा कौन सा काम, तो उसने कहा, उन्होंने कहा, पास वाला गांव में एक राक्षस है जिसने बहुत परेशान कर रखा है, उस राक्षस को मारना है। बंदर पहले घबरा गया कि एक राक्षस और बंदर कैसे मारेगा। तो इंद्रदेव ने बोला कि ये अस्त्र देता हूं, इससे तुम राक्षस को मार सकते हो। बंदर फिर उस पास वाले गांव में गया, वहां जाके देखा पूरा गांव उजड़ा हुआ है। अचानक एक गर गर का आवाज सुनाई दिया, पेड़ के नीचे राक्षस सो रहा था। राक्षस का नाम नहीं पता था, तो उसने जोर से चिल्लाया, राक्षस राक्षस उठो। फिर राक्षस धीरे धीरे उठा और उसको बोला कि तुमने मुझे क्यों जगाया। फिर उसने बोला, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूं, तुम्हें देना चाहता हूं, और इससे तुम सबको मार सकते हो, देवताओं को भी मार सकते हो। तो वो खुश हो गया, बोला कहाँ है दो। फिर बंदर ने कहा कि ऐसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा नाम लिख के तब दूंगा, पर तुम्हारा नाम क्या है, गोलू है, मोटू है, क्या है? बोला, नहीं, मेरा नाम गोलू मोटू कुछ भी नहीं है, मेरा नाम है घमासान। तो फिर जैसे ही उसने बोला, बंदर ने उस अस्त्र के ऊपर घमासान नाम बोल के आकाश के तरफ छोड़ दिया। और जैसे ही वो राक्षस कुछ और सोचता, वो तीर आके उसके छाती में लग गया और राक्षस मर गया। वहीं पे इंद्रदेव फिर प्रकट हुआ। प्रकट होके बोला, तुमने तो बहुत अच्छा से राक्षस को मार दिया, तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम आकाश में भी उड़ सकते हो और पानी में भी तैर सकते हो। वैसे ही मिदास का कहानी है, जो उसको जो राजा है उसको इतना सोना पसंद था, जो हमेशा सोने की चीजों को देखते रहते थे, गहनों को देखते रहते थे, कॉइन्स को देखते रहते थे, और उनकी बेटी का नाम भी गोल्डी रख दिया था। और उसने किसी बुरे आदमी का सेवा किया, इस वजह से उसको वरदान मिला था कि जो भी तुम टच करोगे सब सोना हो जाएगा, और आखिर में खुद की बेटी को भी सोना बना दिया था। महाभारत में भी देखा है, गांधारी को वरदान मिला था 100 पुत्र का, क्योंकि उन्होंने भी सेवा किया था। तो आज का प्रश्न में वरदाता का उल्लेख किया गया है, वरदाता कौन हो सकता है? क्या वरदाता किसी से कुछ मांग सकते हैं? वरदाता तो खुद ही भरपूर होते हैं, तभी वरदान देने लायक होते हैं। तो वरदाता एक भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है, वरदाता देने वाला होता है। देवता भी देने वाला होता है, मांगने वाला नहीं हो सकता है। पर हमने जो भी कहानियां सुने हैं, सब में कुछ ना कुछ मांगने के बाद मिला, तब वरदान मिला है। और वरदान क्या है? वर को इंग्लिश में, वरदान जो है वो इंग्लिश में बून या ब्लेसिंग कहते हैं। और बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में कहा था, वरदान जैसे हमें मिलता है, अमृत वेला मिलता है और मुरली में मिलता है। मुरली में वरदान मिलता है तो हम सोच लेते हैं, आज का वरदान बहुत अच्छा था। पर बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा करके इसको खत्म नहीं कर देना वहां पे। हमें क्या करना है? हमें उस वरदान को सारा दिन स्मृति में लाना है, स्मृति का पानी देना है, और उसके स्वरूप में टिकना है, वो होता है धूप, तब जाके फल स्वरूप बनेगा। वरदान जो अमृत वेला में मिलता है, अगर अमृत वेला मिस किया तो बाबा ने कहा वरदान खत्म। तो संगम युग में हमें वरदान मिलता है। संगम युग में हम पुरुषार्थ करते हैं, पर बाबा को अच्छा नहीं लगता है हम बच्चे अगर इतना मेहनत करते हैं, तो वरदान द्वारा ही हमारा वो मेहनत कम कर देते हैं बाबा। तो ये वरदान संगम युग, वरदानी युग क्यों कहते हैं? इसी युग में सर्व प्राप्ति का, यही युग है जो सर्व प्राप्ति का समय है। दुनिया में भी समय का इंपॉर्टेंस है, पर कुछ कुछ चीज में है। जैसे हमने देखा है हॉस्पिटल में, अगर ऑपरेशन से बच्चा होना है, आजकल एक नियम हो गया है कि पंडित से पूछते हैं कौन सा समय अच्छा है, उसी समय ही ऑपरेशन से बच्चा निकालते हैं। तो ये ऐसे समय है जब हम भगवान के साथ पाट बजाते हैं, भगवान हमारे साथ साथ होते हैं, भगवान हमें फकीर से अमीर बनाते हैं। दूसरा है, ये युग, इसी युग में हमारा सर्वश्रेष्ठ जन्म है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमें एडॉप्ट किया है। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। आज तक हमने सारा कार्मिक अकाउंट वाले रिश्तों को ही सब कुछ माना था, उनके लिए रोए, उनके लिए हंसे, पर जब बाबा मिला, परिचय हुआ, अपना भी परिचय हुआ, बाबा का भी परिचय मिला, तब पता चला कि असली बाप कौन है हमारा। और जैसे जैसे परिचय मिला तो हम करीब होते गए बाबा के। जन्म होते ही बाबा ने हमें स्मृति का तिलक दिया है। और दुनिया में भी जब बच्चा होते हैं, कोई कोई बाप FD बनाते हैं बच्चे के लिए कि बड़ा होकर पढ़ाई करते समय काम आएगा। तो बाबा भी हमारे लिए बहुत बड़ा सा FD लेकर आते हैं जब हमारा जन्म होता है, वो है बहिस, हाथ में लेकर आते हैं। जैसे जैसे हमारा पालना होता है बाबा द्वारा, उंगली पकड़ पकड़ के चलाते हैं। हम जब नए नए ज्ञान में आए थे तो सबने कहा कि एक साल तुम्हें चलाएगा हाथ 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 पकड़ पकड़ के, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि बाद में छोड़ देंगे, पर जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे लगा नहीं, बाबा तो छोड़ते नहीं है। तो बाबा आगे भी साथ साथ रहते हैं, बाबा इशारा करते हैं कौन सा माया है, कौन सा हमें नहीं करना है। मुरली द्वारा इशारा करते हैं, पर कुछ बच्चे इशारा समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद बाबा फिर हाथ बढ़ा देते हैं, हमें खड़ा कर देते हैं। तो कहां बाबा ने हाथ छोड़ा। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं हम बाबा को फॉलो करने लग जाते हैं। छोटा बच्चा क्या करते हैं, बाप का जूता पहन के चलते हैं ना, बाप का कपड़ा भी पहन लेते हैं ना कभी कभी, तो हम भी कदम कदम उनके पीछे पीछे चलते हैं। और जब तक हम चलते हैं तब तक हम सुरक्षित रहते हैं। कहां कहां से डाली तोड़ तोड़ के एक चंदन का पेड़ में हमें जो रहा है बाबा ने इस संगम युग में। तो कितना श्रेष्ठ युग है ये। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमें समझ आ जाता है, तो बाबा हमें उन बच्चों को ढूंढने के लिए भेजते हैं, क्योंकि अभी हमें टाइटल मिल गया है, हमें डिग्री मिल गया है। तो वो टाइटल जो दुनिया में पढ़ाई करके, मेहनत करके, पैसे लगा के मिलता है, एक जन्म के लिए मिलता है, और अब हमें अविनाशी टाइटल मिलता है। और जिस दिन बच्चों को ये वो टाइटल मिल जाता है, वो दूसरे बच्चों को ढूंढ के लाने में मदद करते हैं बाबा के, और वो और भी ज्यादा बाबा के प्रिय हो बन जाते हैं। तो संगम युग सर्व प्राप्ति का युग है। हमें जो चाहिए वो संकल्प द्वारा हमें मिल सकता है, बस संकल्प करना होता है। और उस संकल्प, वो संकल्प करने के लिए हमारे बुद्धि को क्लियर रखना होता है, हमारा मन को सरेंडर करना होता है, एकाग्रता का शक्ति को बढ़ाना होता है। तभी जो संकल्प किया, अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, जो भी चाहिए, वो मुझे हमें मिल जाता है। संगम युग सर्व प्राप्त वायदों की प्राप्ति का युग है। तो यहाँ पे हम जो भी वायदा करते हैं, जैसे कि हम पूरा करते हैं, पूरा बाबा से वायदा करते पूरा होता है, तो साथ के साथ प्राप्ति भी होते रहता है। बाबा ने कहा है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि संगम युग सिर्फ पुरुषार्थ के लिए है और भविष्य में प्राप्ति होगा। तो ये सोच के कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मूंज जाते हैं और फारगति दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। और किससे शादी करते हैं? रावण से शादी कर लेते हैं। तो बाबा ने यहां पे एक बहुत टचिंग महावाक्य कहा है। कुछ दिन पहले मुरली में बताया कि मैं वफादार हूं। बाबा ने कहा मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, आया हूं सुधारने के लिए, सुधार कर ही ले जाऊंगा। तो कितना दिल को छूने की बात है। तो बाबा हर प्राप्ति इसी युग में ही कराते हैं। जैसे छोटे बच्चों को क्या है, कुछ प्राप्ति नहीं करते तो वो आगे नहीं बढ़ता है। अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो तो ये मिलेगा, शुरू में टॉफी से ही मन भर जाता है, फिर बड़े होते हैं तो बड़े बड़े चीज देना होता है। तो बाबा भी हमें देते रहते हैं और उसी खुशी में हम आगे बढ़ते रहते हैं, उठते रहते हैं। ऐसे ही अगला है, इसी युग में भगवान हमारे हाथ में होते हैं, हमारे मुट्ठी में होते हैं। आकाश जमीन सब कुछ हमारे कब्जे में होते हैं। और मुट्ठी क्या है? मुट्ठी है बंद हाथ। हाथ को जब बंद करते हैं तब कोई भी कीमती चीज अंदर में रह जाता है। वो कीमती चीज अगर बाहर कहीं पे रख देते हैं हम, तो क्या होता है, चोरी होने का डर रहता है हमें। तो हाथ सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। तो मुट्ठी में जैसे ही भगवान को हमने रखा है, भगवान हमारा भाग्य अंदर अंदर लिखने लग जाते हैं और हमारा भाग्य रेखा बहुत अच्छा हो जाता है। यहां पे उत्तर में कहा है भगवान हमारे हाथ में होते हैं। जब भगवान बीज हमारा हाथ में होता है तो सारा झाड़ हमारे हाथ में है, तो पूरा विश्व हमारे हाथ में है। तो हमें विश्व कल्याणकारी बनने में मेहनत नहीं लगता है। फिर आइए मुट्ठी में, मुट्ठी की बात में, अगर हम अलबेले हो जाते हैं, मुट्ठी को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, तो माया की प्रवेशता हो जाती है। और माया प्रवेश करने से हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। और इसी मुट्ठी से हम माया को, माया से बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। तो बाबा ने यहां पे कहा है कि हजूर हाजिर हो जाता है, हजूर ही हमारा है। जैसे अलादीन का चिराग है, उसको घिसने से क्या होता है, चिराग को घिसा और जिन प्रकट हुए। और जैसे ही जिन प्रकट हुए क्या बोलते हैं, हुकुम करो मेरे आका, और हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। तो अगर भगवान हमारे हाथ में है तो हम भी हुकुम कर सकते हैं और हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान को हमें हमारे हाथ में कैसे ला सकते हैं, क्या करने से भगवान हमारे हाथ में होंगे? सबसे पहला है हमारा एक बाप के साथ बुद्धि होना चाहिए। दूसरा है हमारा बुद्धि क्लियर होना चाहिए। तीसरा है वो जो भी डायरेक्शन देते हैं उसको हम फॉलो करते चले। चौथा है बाबा से प्यार, पांचवा है हाजी का पाठ हमेशा बजाते रहना है, पांचवा है हमेशा बाबा का मददगार बच्चा बने, और छठा है जो स्नेही और लवलीन होते हैं वो बाबा को हाथ में रख सकते हैं, मुट्ठी में रख सकते हैं। तो क्या हमने बाबा को मुट्ठी में रखा है? चेक करें। अगर नहीं रखा है तो अगला कल्प में 5000 साल बाद मिलेंगे वो मौका, जल्दी करें। तो आज का प्रश्न था, इस संगम युग को वरदान है कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वे ले सकते हो, सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे ये सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएगी। लेकिन हजूर आपका है तो ये सब हाजिर है, बीज आपका है तो ये सब फल आपके हैं। तो हमने कैसे संगम युग में आए वो थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। मैं एक डिप्रेशन का पेशेंट थी और कुछ दिन तो इलाज के बिगड़ रही, फिर आखिर में साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचना ही पड़ा और खूब सारा मेडिसिन मिला। रोज रोज मेडिसिन खाते थे पर उससे भी नींद नहीं आती थी, रोते रहती थी, बस रोना ही मेरा काम था और कुछ नहीं था। और कोई काम नहीं था इस वजह से बैठे बैठे टीवी देखते रहती थी। टीवी में सबसे ज्यादा पसंद था CID और सावधान इंडिया। हमेशा सोचती थी कि अगर डॉक्टर नहीं बनती तो CID जरूर बनती मैं। तो ऐसे टीवी का चैनल चेंज करते करते अचानक पीस ऑफ माइंड चैनल आ गया सामने, तो लगा कि इसको देखना चाहिए। देखा तो सूरज भाई जी का क्लास आ रहा था, टिप्स फॉर सक्सेस। मुझे बहुत आकर्षित किया वो टाइटल, हमने देखा। उसमें भाई जी सारे सोमान के बारे में बता रहे थे, तो एक एक सोमान अच्छे से सुना और फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि 7 दिन का कोर्स करना है। और उसके बाद जो पीस ऑफ माइंड चैनल सारा दिन देखा, रात को सोने तक देखा, पता चला अमृत वेला 4 बजे है, 4 बजे उठना होता है। अगले दिन ही उठ के बैठ गई, उसमें भी सूरज भाई जी का कमेंट्री आ रहा था, उसको फॉलो करके जितना भी समझ में आया कर लिया। दादी के तन में बाबा आए, गीत बजा, बाबा के गीत। मैंने सोचा ये तो औरत है, बाबा क्यों बोल रहे। चलिए वहां पे और सोचा नहीं उसके आगे। फिर मुझे कहीं पे ट्रेनिंग देने जाना था श्री गंगानगर, वहां पे नेट पे सर्च करके सेंटर पहुंच गई। सेंटर पहुंच के वहां पे कोर्स 3rd डे चल रहा था, तो 3rd डे का कोर्स में ही दीदी ने बोला आप बैठ सकते हो। वहां बैठी, सुना, कुछ समझ में नहीं आया। वहां पे दीदी के पास खूब रोई, दीदी ने बहुत प्यार दिया और मुझे लगा कि यही मेरा रास्ता है, अब इस रास्ता को नहीं छोड़ना है। वापस जयपुर आई, जयपुर में फिर से कोर्स किया, ऐसे करके 6 बार कोर्स किया, तब जाके बुद्धि में आया कि ये क्या चीज है। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो बिहार में जाना हुआ ट्रेनिंग के लिए। 3 महीना में तीन महीना में गई थी, जब तीन महीना ज्ञान में थी वहां गई तो सबके मुंह से सुना कि बाबा मिलन, बाबा मिलन। तो वहां दीदी ने बोला था कि एक साल नहीं होने तक बाबा मिलन में नहीं जा सकते, तो दीदी को बोलने का हिम्मत ही नहीं है। क्लास में सुना किसी भाई ने ज्ञान अमृत बांट के सेवा किया। अब मुझे आइडिया था कि सेवा करना सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, तो जो भी सेंटर पे जाती थी झाड़ू पोछा करती थी मैं। तो मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ज्ञान अमृत भी बांट सकते, तो जयपुर में फोन किया, फोन करके दीदी को बोला दीदी मुझे ज्ञान अमृत बांटना है, मेरे लिए 100 ज्ञान अमृत रखिएगा। तो दीदी के मुख से निकला आप बाबा मिलन में जाओगे, और वो मेरा पहला खुशी था, इतना खुशी मिला मुझे उस दिन। मैं मन मन में बहुत डांस करने लगी, बाबा के रूम में गई, जाके बाबा को बोला बाबा बाबा मिलन पे तो वाइट ड्रेस पहनना होगा, मेरे पास तो साड़ी नहीं। और जिस सेंटर पे बिहार में थी उन दीदी को संकल्प आया मुझे साड़ी देने के लिए, 2 साड़ी मुझे दे दिया। वहां पे ब्रह्मा भोजन था जो रानी दीदी का सेंटर था, तो वहां पे हमने पहली बार सफेद साड़ी पहना था, और वो जो सफेद साड़ी पहना मैं उसके बाद हम छोड़ ही नहीं पाए उस सफेद साड़ी को। पांडव भवन से बहुत लगाव था, चोरी छुपे एक दिन पांडव भवन में आ गई, रात को बस में बैठ गई, सुबह पहुंच गई, पहुंच करके चंद्रशेखर भाई जी के पास आई। मुझे पता था ऐसे बिगर लेटर का रहने का जगह नहीं मिलता है, आपको याद किया, आके बोला मुझे रहना है 2 दिन, फटक से दे दिया मुझे कमरा। डाइनिंग हॉल में गई, जाके वहां पे जो बोर्ड में सामान लिखा हुआ है वो नोट कर रही थी मैं खड़ी खड़ी, पीछे से एक फरिश्ता आया और आके बोला आपका नंबर देना मैं व्हाट्सएप पे जोड़ देता हूँ। ये फरिश्ता यहीं पे बैठे, आप लोगों को पता होगा कौन है। तो सेल्फ प्रोग्रेस में तब से जुड़ गई और तब से इसी ग्रुप का पालना मिलते रहा और इसी ग्रुप को फॉलो करते गई। और आज 2016 अब शायद